Progress.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا سيدنا الله. مجید بھائی نے آخر میں بات ہی ایسی کر دی ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کو ایمان سے محروم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ بس یہ ایک موقع ہے، آخری موقع ہے میرے ہاتھ میں، اور اس میں اگر میں اس کو ایمان سے محروم کر دوں نا تو میری ساری زندگی کی محنت وصول ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو ساری زندگی محنت کر رہا ہوتا ہے ایمان سے محروم کرنے کی، لیکن مومن کو وہ کر نہیں پا رہا ہوتا، تو بیسیکلی وہ ساری زندگی ناکام ہو رہا ہوتا ہے، ناکام ہو رہا ہوتا ہے، ناکام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ شیطان ایسا ہمت والا ہے اور ایسا جو ہے نا وہ پرسسٹنٹ ہے کہ یہ آخری وقت تک ہمت نہیں ہارتا، اور اس وقت موت کے وقت آ کر کے ہم جیسے لوگ تو کیا، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو، اتنے بڑے بڑے اولیاء کو اور علماء کو اور مفسرین ہیں امام غازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ان کو آ کر کے بھی کوشش کرتا ہے کہ بس اس وقت جو ہے نا میں ایک لاسٹ اٹیمپٹ کر لوں، اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر مننا ہی ہے انہوں نے، اس کے بعد تو توبہ کے بھی کوئی ان کے پاس چانس نہیں ہوگا. تو شیطان سے پھر ہمیں کتنا زیادہ جو ہے نا وہ حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں دوا بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی اس سے حفاظت کے لیے کوئی اسباب اختیار کرنا. اور اسباب اختیار کیا کرنے ہوتے ہیں؟ بس اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کے ساتھ جڑے رہیں، محبت کے ساتھ، ایسے نہیں کہ بس ایسے ہی جڑے رہیں آ کر کے بیٹھ گئے اور بس محبت شحبت کوئی نہیں ہے، نہیں، محبت کے ساتھ جڑے رہنے سے اللہ تعالیٰ پھر حفاظت فرما دیتے ہیں. جس کو محبت نہیں ہوتی نا اللہ والوں سے، اس کے ساتھ تو بلکہ الٹا شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ شیطان جاؤ، اس کو میرے بندوں کے ساتھ محبت بھی نہیں ہے اور سامنے آ کر کے منافقت کرتا ہے، ایسے جھوٹے جھوٹے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے بندے کو تو الٹا اور شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ لے جاؤ اس کو. تو محبت کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھانا، اس سے پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی حفاظت، شیطان سے حفاظت کروا دیتے ہیں. تو اب یہ محبت کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، تو اسی ضمن میں اسی ٹاپک کے اوپر نا اب ہمارا جو سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر ہم ایک ایسی جگہ کا ذکر شروع کریں گے کہ جہاں پر کہ اللہ والوں کی محبت میں آ کر کے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور ان کی محبت سے فائدے اٹھایا کرتے تھے، ان کی صحبت سے فائدے اٹھایا کرتے تھے. یہ کون سی جگہ تھی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اب ایک انسان جب اس کی زندگی ہوتی ہے، زندگی گزارتا ہے، تو صبح سے لے کر کے رات تک وہ کہیں نہ کہیں اپنا وقت گزارتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ٹائم گزرتا ہے نا. تو ایک جگہ ہوتی ہے جس کو اس کا گھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر کے اندر اس کا کافی سارا وقت گزرتا ہے، رات کے وقت گھر میں رہتا ہے، دن میں بھی کافی آگے پیچھے ٹائمز ہوتے ہیں، صبح کے وقت گھر میں ہوتا ہے، پھر شام کے وقت گھر آ جاتا ہے. تو ایک تو جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنا وقت گزارتا ہے جس کو گھر کہتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ گھر کے علاوہ ٹائم گزارتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جگہ جو ہے نا وہ اگر اچھی جگہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ بھائی آپ گھر کے علاوہ جس جگہ وقت گزار رہے ہیں وہ کوئی بری جگہ نہیں ہے بلکہ اچھی جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت گھر کے علاوہ جس جگہ پہ گزار رہے ہیں نا وہ جگہ سب سے اچھی جگہ کیوں نہ ہو، ہے نا، کیوں نہ ایسی جگہ ہو کہ جو کہ سب سے زیادہ اچھی ہے. سب سے زیادہ اچھی جگہ کی کیا تعریف ہے؟ سب سے زیادہ اچھی جگہ، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سب سے اچھی جگہ؟ کوئی ڈیفینیشن، ایک جنرل ڈیفینیشن، اچھی جگہ کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ ڈیفینیشن، جہاں پہ سب سے زیادہ اچھے لوگ ہوں. زبردست ڈیفینیشن کہی، ماشاء اللہ. جہاں پہ اچھی صحبت ملتی ہو، جیسے انہوں نے کہا کہ جہاں پہ سب سے زیادہ اچھے لوگ ہوں. अच्छा, एक और अंदाज से अगर इसकी तारीफ की जाए, डिफाइन किया जाए, तो सबसे अच्छी जगह वो जगह होगी कि, आप भी कुछ बताए, का इंतकाल हुआ वो सबसे अच्छी जगह है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया, सबसे अच्छी जगह जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम हैं, राइट। तो एक बहुत ही जनरलाइज सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी, इन्होंने कहा जहाँ पर पीस ऑफ माइंड हो। हाँ, पीस ऑफ माइंड जहाँ पर हो वो बड़ी अच्छी जगह होती है। तो सबसे अच्छी जगह की एक जनरल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल इन दोनों डेफिनेशन, बल्कि तीनों डेफिनेशन से मैच भी करती है। वो क्या कि वो जगह सबसे अच्छी जगह होगी कि जो कि अल्लाह को सबसे अच्छी लगती है ना, अल्लाह ताला को जो जगह सबसे अच्छी लगती है ना, वो जगह जो है सबसे अच्छी जगह होगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला को इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, जनरल बात करना ना, जनरल एक जगह नहीं, मस्जिद, ठीक है ना, जहां पे अल्लाह ताला की इबादत होती है ना, वो जगह अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। अब वो जगह जो है वो मक्का मुकरमा में अगर आप होंगे तो वो मस्जिद हराम होगी, मदीना मुनव्वरा में होंगे तो वो मस्जिद नबवी होगी, ठीक है ना। या आप किसी अपने मोहल्ले में होंगे, आप रियाज में होंगे, आप पाकिस्तान में होंगे, कराची में होंगे, इंडिया में होंगे, जहां भी होंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा अच्छी जगह कौन सी होगी, मस्जिद है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये बात बताई है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत किन जगहों के साथ होती है, मस्जिदों के साथ होती है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दूसरी तरफ की बात भी बताई कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को नफरत किस जगह से होती है दुनिया के अंदर, जहां पर शैतान, कौन सी जगह, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बाजार, मार्केट्स, ठीक है ना, जहां जो मार्केट प्लेस होती है ना, बाजार, यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम को, सॉरी, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नफरत जो है ना वो बाजार की जगह से होती है, ठीक है, मार्केट प्लेस से होती है। तो ये जनरल जनरलाइज करके बता दिया ना कि जहां अल्लाह ताला की इबादत होती है वहां नबी अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उस जगह से, और जहां पर जो है वो दुनियादारी सबसे ज्यादा हो रही होती है ना, बस अपनी अपने माल कमाओ माल कमाओ माल कमाओ, ठीक है, तो वो चीज़ कहाँ हो रही होती है, वो बाजार के अंदर हो रही होती है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा नापसंद जो है वो बाजार है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है अपने घरों के बाद वो मस्जिदों के अंदर गुजारें, या ऐसी जगह पर गुजारें कि जहां पर के अल्लाह ताला के नेक लोग हों। क्यों, इसलिए कि जहां पर अल्लाह ताला के नेक लोग जमा हो जाते हैं ना, अगर वो जाहिरी तौर पर मस्जिद नहीं भी है, ठीक है ना, अगर वो जाहिरी तौर पर मस्जिद नहीं भी है, यानी जिस तरह मस्जिद का मीनार और मस्जिद के अंदर जहाँ पे जुमा होता है वो मस्जिद होती है, जहाँ पे पांच वक्त की नमाज होती है मस्जिद होती है, लेकिन अल्लाह वाले किसी और जगह जमा हो गए जहाँ पर कभी पांच वक्त की नमाज नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन वो जो अल्लाह वालों की सोहबत होती है ना, इस सोहबत की वजह से वो जगह भी जो है ना वो अल्लाह ताला की इबादत वाली जगह बन जाती है। क्यों, इसलिए कि अल्लाह वालों की सोहबत में जब आप बैठते हैं तो आपका दिल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत की तरफ माइल होता है, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ आपके अंदर रग़बत पैदा होती है, ठीक है। तो मस्जिद जो है वहां पर तो बाकायदा फिजिकली इबादत हो रही होती है, ठीक है, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत होती है, मजालिस होती हैं, तो वहां पर क्या, कौन सी वाली इबादत हो रही होती है, वहां पर बातनी इबादत हो रही होती है, आपका दिल अल्लाह ताला की अतात के लिए तैयार हो रहा होता है ना, आपके अंदर शौक पैदा हो रहा होता है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अल्लाह वालों की मजालिस होती हैं, ये भी फिर अल्लाह ताला की इबादत वाली ही जगहों में एक तरह से शामिल हो गई, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि फिर ऊंटनी जहां पर जाकर के रुकी, वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु का घर था, ठीक है, वहां पर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना स्टे रख लिया, क़याम फरमा लिया। तो उसकी बातें हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने मदीना मुनव्वरा में जो नबी अलैहिस्सलाम ने दावत तबलीग की का काम शुरू कर दिया था उसके बारे में भी पढ़ा, और उसमें हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी कौमें रहती हैं, ठीक है, उनमें से एक मेजर कौम जो थी वो यहूद थे, और यहूदियों के साथ जब सारा की सारी ये सारा काम हुआ तो फिर कुछ ने कबूल कर लिया और बाकियों ने जो है नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत करी। और फिर हमने बिल्कुल आखिरी वाकया जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो था हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया, ठीक है, क्योंकि उनका वाकया भी जो है वो यहूदियों से ही रिलेटेड था ना, क्योंकि एक यहूदी ही के वो गुलाम थे, और उसी से फिर उनको आज़ादी मिली, जब वो 100 खजूर के दरख्त लगाए नबी अलैहिस्सलाम ने उनके खातिर, और फिर पेमेंट करी 40 अवकिया की, तो इस तरीके से फिर उनको भी आज़ादी मिल गई। तो अब यहूदियों की इस तरह से बात करके अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला वाक़िया सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो है तामीर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, औरतों को घर के अंदर वक्त ज्यादा गुजारने का हुक्म है जी, क्योंकि औरतों की मस्जिद जो है ना वो उनका घर ही है। ठीक है ना, उनके घर के अंदर भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो किसी एक जगह को खास कर लें कि हमने यहाँ पे नमाज पढ़नी है। यूजुअली औरतें अपने बेडरूम को जो है वो खास कर लेती हैं, यहीं पर उनकी ज्यादातर नमाजें होती हैं। ठीक है, तो औरतों के लिए घर ही मस्जिद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत के लिए उसके घर का जो सहन है ना वहां पर नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, और सहन के यानी सहन जो 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 बेसिकली एक ओपन एरिया होता है घर का। ठीक है, फिर उसके बाद जो अंदर चले जाए ना, मजीद घर के अंदर चले जाए, तो वहां पर नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो सहन में नमाज पढ़ने के सवाब से भी ज्यादा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद और अगर कोई इनर क्वार्टर घर के अंदर मजीद कोई अंदर की जगह है तो वहां पर नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो बाहर नमाज पढ़ने से बेहतर है। ठीक है, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब जो है वो औरत को उसके घर के अंदर नमाज पढ़ने का। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें सवाब चाहिए कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए? हमें सवाब चाहिए कि हमें घूमना फिरना चाहिए? ठीक है कि भाई मस्जिद नबी जा रही हूँ, मुझे घूमने का बड़ा शौक है, मुझे बाहर निकलने का, चहलकदमी करने का ज्यादा शौक है। भाई सवाब के लिए नमाज पढ़ रहे हैं कि चहलकदमी करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं? ठीक है ना, अगर सवाब के लिए नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर तो घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हाँ वैसे अगर आप माशाल्लाह घूमना फिरना है, आपको मस्जिद नबी देखनी है, ठीक है ना, तो आप मस्जिद नबी चले जाए। ठीक है, या आपको नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के ऊपर जाकर के सलाम पेश करना है तो वो तो आप घर से नहीं कर सकते ना, वो उसके लिए तो आपको मस्जिद नबी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मस्जिद नबी जाएं। औरतों की बात हो रही है, ठीक, लड़कियों से बात हो रही है कि उसके लिए आप मस्जिद नबी जाते हैं, और जब आप वहां पर जाते हैं तो नमाज का तो वक्त हो जाता है, थोड़ी देर के बाद एक नमाज का वक्त आ जाता है, तो फिर आप नमाज वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप मैं ज्यादा सवाब के लिए भागी भागी घर पहुंचूंगी फिर नमाज पढ़ना, पता चला नमाज का टाइम खत्म हो गया तो नमाज का टाइम खत्म करना इसकी इजाजत नहीं है। तो मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ लें। उसी तरह मक्का मुकरमा के अंदर जब तवाफ के लिए काबतुल्ला का तवाफ करना है तो वो तवाफ घर में नहीं हो सकता, तवाफ करने के लिए काबतुल्ला जाना होगा। ठीक है, तो वहां पर जब तवाफ करने के लिए जा रहे हैं और उमरा करने के लिए जा रहे हैं तो फिर नमाज का वक्त आएगा वहीं पर नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए भागे भागे करनी है कि नमाज का वक्त खत्म हो गया होटल जाके नमाज पढ़ूंगी, तो फिर नमाज कज़ा होगी। ठीक है, लेकिन सवाब जो है ना वो नमाज पढ़ने का, अगर खाली नमाज का वक्त है तो सवाब जो है ना वो औरत के लिए घर में ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, मौजूदा ईमान वाले भी देखते हैं और काफिर भी, फिर काफिर की दिल पर क्यों असर नहीं होता? ना तो हम बात ही बिल्कुल दूसरी कर रहे हैं, मौजे वाली बात कहां से आ गई? काफिर के दिल के ऊपर मौजे से असर क्यों नहीं होता? क्योंकि काफिर ने जो है ना वो अपने दिल के अंदर दिल को काला कर लिया होता है, ब्लैक पेंट अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। हाँ, अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं बेशक, लेकिन वो मोहर जो लगाते हैं तो वो काफिर की किसी गलती की वजह से मोहर लगाते हैं ना, तो काफिर की गलती ये होती है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी दिल में रखी हुई होती है। ठीक है ना, जब दुश्मनी रखी हुई है अल्लाह के वली के साथ, अल्लाह के नबी के साथ, तो अब सामने जो है वो यानी मौजज़ा हो जाए, या सामने जो है वो कोई फरिश्ता आ जाए, या सामने जो है वो जमीन फट जाए, या समंदर जो है वो फट करके जो है वो दो टुकड़े हो जाए, है भाई फिरौन की और पूरी की पूरी आर्मी की, उसके सामने मूसा अलैहि सलाम ने असा मारा और असा मारने से जो है वो समंदर यूं करके 12 हिस्से बन गए, समंदर के अंदर 12 रास्ते बन गए। ठीक है ना, तो क्या फिरौन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह? फिरौन ने कहा था? फिरौन ने भी नहीं कहा, फिरौन के जनरल्स ने भी नहीं कहा, जनरल्स ने भी नहीं कहा, और फिरौन के जो है वो आर्मी वालों ने भी नहीं कहा। इतना बड़ा मुआवजा, समंदर के अंदर 12 रास्ते बन गए, एक बंदा भी मुसलमान नहीं हुआ उनमें से। क्यों? इसलिए कि मूसा अलैहि सलाम से दुश्मनी थी, ये वजह थी, मूसा अलैहि सलाम से दुश्मनी थी। ठीक है ना, बाकी बनी इसराइल वालों से तो दोस्तियां लगाई हुई थी, नहीं, मूसा अलैहि सलाम से दुश्मनी थी इन लोगों। اس وجہ سے اتنا بڑا معجزہ سامنے آیا پھر بھی مسلمان نہیں ہو. تو یہ وجہ ہوتی ہے معجزہ ان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہوتی. دشمنی جو ہوتی ہے نا, اگر ہمارے اندر بھی کچھ ہے اس قسم کا مسئلہ, بڑا آسان ہے توبہ, اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ, میں معاف کر دیجئے, اب تک میں نے غلطی کر لی ہے, ٹائم ضائع کر لیا, اپنا بہت کچھ کر لیا, آپ مجھے معاف کر دیجئے, آئندہ نہیں کروں گا, کوشش کروں گا کہ آئندہ میں کسی کے ساتھ دشمنی نہ کروں. یہ جو کعبہ میں عورتیں مطاف میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے نماز کے وقت ہو جاتا ہے تو, یہی تو بول رہے ہیں کہ بھائی نماز کے وقت ہو جاتا ہے تو وہی نماز پڑھیں گے نہ جائیں, یہی تو بتا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اچھا, تو مسجد نبوی کی تعمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کری, تو یہ کون سا والا سال تھا اگر اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اس کو دیکھا جائے؟ واٹ ایئر واز اٹ؟ پیچھے ہم سالوں کا بھی تو ذکر کرتے تھے نا, پہلی نبوت کا سال, دوسری نبوت کا سال, اب یہ کون سا سال؟ فرسٹ ہجری ہے نا, بالکل ہجرت کا پہلا سال ہے نا, کیونکہ بس گھر میں سیٹل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسجد کی فکر کری. اچھا, مسجد کی جب تلاش شروع کری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ کی نظر جو ہے وہ کس جگہ پر گئی؟ یہ جو جگہ تھی نا, تو اس لیے نہیں کہ یہاں پہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی تو اس وجہ سے چلو یہاں پہ مسجد بناتے, اس لیے نہیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر آنے سے پہلے ہی مسلمان جو تھے نا مدینہ منورہ میں, تو بہت سارے مسلمان پہلے سے موجود تھے نا, تو وہ لوگ نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ, ٹھیک ہے, مل کر کے نماز پڑھتے تھے, تو وہ نماز پڑھتے تھے اسی جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے, باقاعدہ مسجد نہیں تھی یہ, بس یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے. ان کی اونٹنی یہاں پر بیٹھی بھی تھی, پہلی دفعہ جہاں جو بیٹھی تھی نا تو وہ یہاں پہ جا کر کے بیٹھی تھی, ٹھیک ہے نا, ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارہ تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ یہاں پر مسلمان پہلے بھی اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور نماز پڑھ لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ بھائی یہ جو جگہ ہے یہ کس کی اونرشپ کے اندر ہے, کس کی ملکیت ہے یہ جگہ, کیونکہ یہ شہر تھا نا, یہ مسجد نبی, یہ جو مدینہ منورہ کا شہر تھا, اب شہر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, یہ میری جگہ ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا لون ہے, یہ میرا استبل ہے جس کے اندر میں اپنے گھوڑے رکھتا ہوں, میں اپنے مویشی رکھتا ہوں, تو لوگوں کی پھر اونرشپس بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے لوگ بالکل انیشلی جو ہے نا لوگوں نے اپنے جگہیں مختص کر لی ہوتی, ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کوئی کنٹری نہیں ہوتا تھا, کنٹری کی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی, گورنمنٹ کے کنٹرول میں پورا کا پورا ملک ہے, اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو پلاٹس اسائن کر رہی ہے, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور یہاں پر تو ایسی کوئی گورنمنٹ تھی بھی نہیں, تو بس جو جگہ کسی نے لے لی بس یہ میری جگہ ہوگی, ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے یہ جگہ جو تھی نا یہ اونرشپ میں کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی اونرشپ میں تھی, ٹھیک ہے, ان کے نام کیا تھے؟ ان کے نام کسی کو یاد ہے؟ سہل اور سہیل, ٹھیک ہے, دونوں ماشاء اللہ سہیل انکل, سہل اور سہیل, سہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان, ٹھیک ہے, یہ بات بڑی سہل ہے, یہ کام بڑا سہل ہے, ٹھیک ہے نا, اور سہیل جو ہے یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ یہ آسانی, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نا خصوصی معاملہ فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسانیاں بڑی پسند تھیں, امت کے لیے آسانیاں, ہر چیز کے اندر آسانیاں, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ٹریول کیا کرتے تھے نا تو اگر سامنے راستہ ہے اور راستوں میں سے نا ایسا معاملہ ہو گیا کہ جی آپ یہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں, 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 چار راستے سامنے آ گئے, ٹھیک ہے, تو اب جو گائیڈ ہوتے تھے نا نیویگیٹرز, کیونکہ اس زمانے میں جو ٹریول کرتے تھے اس زمانے میں بھی اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لے کے ٹریول کرتے تھے جس کو کہ راستوں کا پتہ ہوتا تھا, اس کو نیویگیٹر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہادی, راستہ دکھانے والا, جس طرح ہجرت کے وقت بھی ایک بندے کو لے کے چلے تھے نا, کافر تھا وہ بندہ, اس کو لے کے چلے تھے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہادی سے, اس راستہ دکھانے والے سے پوچھتے تھے کہ اچھا یہ جو ہمارے پاس چار آلٹرنیٹو راستے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں سب سے آسان راستہ کون سا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ بتاتا تھا ان میں سب سے آسان راستہ یہ والا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے ہم اسی راستے کے اوپر جائیں گے, ہم آسان والے راستے کے اوپر جائیں گے, ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مزے مزے کی باتیں ہیں, پڑھتے چلے جائیں سیرت کے اندر, تفاسیر کے اندر, تو اور بھی باتیں, اور ٹائم لگ جائے گا اس کے اندر, چلیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سہل اور سہیل جو ہے نا یہ دو بچے تھے اور یہ کافی چھوٹے بچے تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, یہ دونوں یتیم تھے, ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے چچا سے بات کری, چچا زندہ تھے اور چچا جو تھے نا وہ ان کی ٹیک کیئر کیا کرتے تھے, ठीक है ना, ये चचा के साथ रहते होंगे। हाँ पूछा जा, नहीं बंद जगह उसमें जो है ना वो, यानी ओपन सी जगह तो थी, बताएं ऐसे ही लगता है कि ओपन सी जगह थी, लेकिन वहां पे कुछ चीजें पहले से मौजूद थी। दो चीजों जो उनका पता लगता है वो ये थी कि वहां पर दरख्त भी थे खजूर के, ठीक है, और दूसरी चीज ये पता चलती है कि वहां पर कुछ पुराने लोगों की कब्रें भी थी, ठीक है, मुशरिकीन की कब्रें थी वहां पर बनी हुई, तो किसी जमाने में बन गई होंगी वो कब्रें वहां पर। तो उस जमाने में ना बाकायदा कब्रिस्तान का ऐसा सिस्टम नहीं था, ठीक है, यानी कि दूर जाकर के कब दफन करना, ऐसा सिस्टम वहां पे उस जमाने में नहीं था, बल्कि जिसका इंतकाल होता था उसको करीबी कहीं दफन कर देते थे, ठीक है। जैसे कि हजरत अबू अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलाम के वालिद का जब इंतकाल हुआ, ठीक है ना, हजरत अब्दुल्ला, ठीक है, तो उनको जो है वो कोई बाहर ले जाकर के दफन नहीं किया गया, बल्कि करीब ही किसी के घर के बाहर जो है ना उनको दफन कर दिया गया, ठीक है ना। आज जो है वो उनकी कब्र की जगह मालूम है, मस्जिद नबवी में जब आप वेस्ट साइड से, यानी एक तरफ तो जन्नतुल बकी है ना कब्रिस्तान, उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जब आप आते हैं ना, तो वहां पर वो जगह मौजूद है जहां पर के इनके वालिद की, नबी अलैहिस्सलाम के वालिद की कब्र थी, और ये जगह तो शहर का हिस्सा थी, ठीक है ना, इट वॉज इनसाइड द सिटी ऑफ मदीना मुनव्वरा। जी
अच्छा
वो मूव हो गई है, वहां से कब्र को बाकायदा मूव कर दिया गया है, ठीक है, अब नहीं है, लेकिन पहले वहां पर थी, तो ये मशायर को पता है कि पहले यहाँ पर थी कब्र। वो तो रास्ते में इंतकाल हुआ था ना उनका, रबवा का एक मुकाम, रबवा मुकाम का नाम है, अबवा, अबवा, तो उनकी कब्र वहां पे अबवा में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि वो जब सफर कर रही थी ना मदीना मुनव्वरा से वापस मक्का मुकरमा के, तो बिल्कुल कहीं रास्ते में, बिल्कुल वो अनजान गैर आबाद सी जगह है, कोई वहां पे लोग रहते रहते हैं। अच्छा इनकी अब्दुल्ला की कब्र, वो हमें मशाइख ने बताया कि वो कब्र यहां से निकाल करके जन्नतुल बकी के अंदर मूव कर दी गई। अब लेकिन उसका निशान नहीं पता कि जन्नतुल बकी में कहां पे कब्र है। अच्छा तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनके चचा से बात करी कि भाई हमें जो है ना ये जगह आप दे दें मस्जिद बनाने के लिए, तो हम आपको इसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है, हम फ्री में नहीं लेंगे। तो चचा ने बच्चों को बताया, बच्चों ने कहा हम अल्लाह के नबी से कोई पैसा नहीं लेना चाहते, है ना, हम इस जमीन को जो हमारी है ना हम फ्री में देते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेना चाहते इसके लिए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को कबूल नहीं किया, छोटे बच्चे थे, और छोटे बच्चों के साथ बाकायदा शरीयत का उसूल भी है कि अगर छोटे बच्चे यानी जो अभी बालिग नहीं हुए हैं वो अगर अपनी कोई चीज किसी को दे देना, स्पेशली कोई मेजर चीज है जैसे एक इतना बड़ा सा एक प्लॉट है, जमीन का एरिया है, वो दे देना, तो उनसे जो है उनका उनका दे देना जो है ना इसको कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की जो है ना अभी इतनी ज्यादा समझ डेवलप नहीं होती है, इतने मेच्योर नहीं हुए होते हैं, तो छोटी मोटी चीजें तो चले बच्चे ने आपको दे दिया, आपने शेयरिंग कर ली, केयरिंग कर ली, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मेजर चीजें जो है ना अपनी प्रॉपर्टी, अपना माल, पैसा, सोना चांदी जेवरात वगैरह, ये कोई छोटा बच्चा देगा तो उसके देने को कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको समझ नहीं है, इसको नहीं पता कि इसकी क्या जरूरियात है, बड़े होने के बाद उसको कैसे इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसको शरीयत के अंदर अभी भी कबूल नहीं किया जाता। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी इन बच्चों से हदिया कबूल नहीं किया, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम हदिया कबूल कर लिया करते थे, है ना, हजरत सलमान फारसी का वाकया पिछले क्लास के अंदर पढ़ा है कि उन्होंने आके हदिया दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तो हर वक्त ही देते रहते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना फिर इनसे कबूल नहीं किया बल्कि कहा कि हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पेमेंट कैसे करी, आप सबको हम पहले भी बता चुके हैं और आपको पता भी होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 दीनार पेमेंट करी इसकी, ठीक है, उन बच्चों को 10 दीनार ये इस प्राइस के अंदर उसको खरीद लिया, ठीक है, वो खरीद करके फिर नबी अलैहिस्सलाम को हदिया कर दिया कि अब आप जो चाहें इसके अंदर करें, जैसे चाहें करें, ठीक है। तो ये जो मस्जिद नबवी है फिर इसकी तामीर शुरू हुई, और इस तामीर में सबसे पहले क्या किया कि जमीन को साफ किया, यहाँ पे जो दरख्त थे उन दरख्तों को काट दिया, और यहाँ पे जो मुशरकिन की कब्रें थी ना उन कब्रों को खत्म कर दिया, क्योंकि मुशरकिन की कब्रों का कोई एहतराम एहतराम नहीं है दीन के, ठीक है, बस ठीक है, वो खबर खबर, ठीक है, तो मुशरकिन की कब्रों को जो है वो हमवार कर दिया, यानी जैसे उनका कोई कोई बस कोई आसार नहीं रखे। नहीं, उनको बस हमवार करती है, यानी उसके थोड़ा सा उठा देते हैं ना, कब्र की एक जगह बना देते हैं और वहां पे पत्थर शत्थर लगा देते हैं, तो उन सब चीजों को हटा करके इसको कहते हैं बिल्कुल प्लेन करती है, हमवार करती है। ठीक है, तो अब वहां पर फिर मस्जिद की तामीर शुरू हुई। और तामीर का तरीका क्या था कि बेसिकली उस जमाने में जो कंस्ट्रक्शन होती थी वो दो तरीके से होती थी, एक तो ईंटें बना करके, ठीक है, पत्थरों को रख करके, फिर वो उनकी ईंटें, उनको ईंटों को तौर पर यूज करते थे, या ये कि खजूर के दरख्तों को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो मस्जिद नबी की तामीर ऐसी करी कि खजूरों के कुछ दरख्त काट करके लाए गए, और उनके जो 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 ट्रंक्स थे ना, जो तने थे, उन तनों को सुतून के तौर पर, पिलर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस तरीके से पिलर्स लगा दिए आगे, कुछ पिलर्स लगा दिए, और उन पिलर्स के दरमियान जो है ना, वो खजूर ही के जो पत्ते होते हैं, बहुत बड़े बड़े खजूर के पत्ते होते हैं, उन पत्तों को जो है ना वो पिलर्स के दरमियान वॉल्स के तौर पर लगा दिए। ठीक है, और फिर छत भी जो है वो इन खजूर के पत्तों से ही बना दी गई। ठीक है, तो बेसिकली मस्जिद नबवी जो बिल्कुल फर्स्ट कंस्ट्रक्शन थी वो क्या थी, बेसिकली खजूर के दरख्त है ना, उन्हीं से जो है वो पिलर्स भी बन गए, उन्हीं से जो है वो वॉल्स भी बन गए, उन्हीं से जो है वो सीलिंग भी बन गई। तो ये बन गई अल्लाह ताला की मुकर्रब तरीन जगहों में से एक जगह, खजूर के पत्तों के जरिए से। ठीक है, अब जो है ये जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उसमें जो है ना वो, अच्छा, कुछ जो है वो ईंटें इस्तेमाल हुई भी थी। ठीक है ना, बीच यानी कुछ यानी फाउंड बेसिकली वॉल्स के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो ईंटें इन लोगों ने लगाई थी। तो वो कैसे हुआ कि यानी बकायदा जैसे कि गारा मिट्टी वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के अंदर पानी लगाते हैं, उससे वो गारा बन जाता है। ठीक है, फिर गारे से जो है वो कुछ कच्ची ईंटें बनाते हैं, तो वो ईंटें जो है ना वो सहाबा बना रहे थे, और वो ईंटें उठा उठा करके फिर ले करके आ रहे थे। ठीक है, तो खाली खजूर के, अभी शुरू में अगर आपको लगाओ कि सिर्फ खजूर से, तो नहीं, सिर्फ खजूर के पत्ते और सिर्फ खजूर के तने नहीं थे, और बल्कि कुछ ईंटें भी उसके अंदर शामिल थी। तो एक पूरी एक्टिविटी चल रही थी वहां पर। ठीक है, तो उस एक्टिविटी के बारे में किताबों के अंदर बड़ी मजे मजे की बातें लिखी हैं कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा जो थे वो सारे के सारे इस काम के अंदर साथ शामिल थे। ठीक है, एक सहाबी के जिनका नाम था हजरत तलक बिन अली, तलक बिन अली इनका नाम था, तो इनको नबी अलैहिस्सलाम ने गारा घोलने का काम दिया था। यानी वो जो जिस चीज से दीवारें, जिस चीज से ईंटें बनानी है ना, तो उस मिट्टी के अंदर पानी घोल करके फिर उसको यानी एक बिल्डिंग मटेरियल टाइप का बनाने का, तो उसको गारा घोलना कहते हैं। तो ये गारा घोलने का काम कर रहे थे, और इससे जो है ना फिर कोई जो है वो ईंटें बनाते थे, और ईंटें ले ले करके फिर वहां पर जाते थे। तो इन्होंने तल्ख बिन अली फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये भी कहा कि अल्लाह के नबी, मैं भी ईंटें अगर उठाने का काम कर लूं, तो नबी अलैहिस्सलाम का नहीं, तुम्हें जो काम आता है ना तुम वही वाला काम करो, तुम ये काम ज्यादा अच्छी तरीके से करते हो। ठीक है ना, बिकॉज वो करते होंगे, लोगों के घर बनाने के अंदर गारा घोलने वाला काम करते होंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मना कर दिया और कहा कि जो तुम अच्छा करते हो तुम वही वाला काम करो। ठीक है, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात मान ली। अच्छा, फिर नबी अलैहिस्सलाम और सहाबे कराम जो ईंटें उठा उठा करके लाते थे ना, तो उस दौरान जैसे पहले मस्जिद कुबा को बनाने का वाकया हमने पढ़ा था, तो वहां पर भी ऐसे ही था कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा जो है वो अशआर पढ़ रहे थे, है ना। तो इस वक्त भी फिर आप सरसरम और सहाबा अशआर पढ़ रहे थे, तो फरमाते थे हाजल हिमालु ला हिमालु खैबरा, कि ये जो हम बोझ उठा के लेकर के आ रहे हैं ना ईंटों का, ये कोई खैबर का बोझ नहीं है। यानी खैबर जो था वो, खैबर की जो जगह थी उस वक्त यहूदियों की ओनरशिप में थी, यहूदियों को कंट्रोल था वहां पर, और वहां पर जो है वो जो काम होते थे वो उस काम को फिर मुसलमान अच्छा नहीं समझते थे। ठीक है, ये खैबर के अंदर तो माल पैसे की बात है और मुशरिकीन है, यहूद है वहां पर। तो फरमाया कि हाजल हिमालू ला हिमालू खैबरा, ये जो हम बोझ उठा के लेके जा रहे हैं ना, ये खैबर की खजूरों का बोझ नहीं है। हाज अबर्रु रब्बिना व अतहर, बल्कि ए परवरदिगार, रब रब्बिना, ए हमारे परवरदिगार, हाजा अबर्रु व अतहर, ये सबसे उम्दा और बेहतरीन बोझ है जो कि हम अल्लाह के लिए मस्जिद बनाने के लिए बोझ उठा रहे हैं ना, ये तो सबसे बेहतरीन बोझ है। ठीक है, ये कोई खैबर की खजूरों का बोझ हम नहीं उठा रहे कि जी उससे फिर हमें पैसे मिलेंगे और फिर हम जो है वो मजे करेंगे। और कभी ये भी शेर पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा, कि ए हमारे अल्लाह, ए अल्लाह, بے شک جو اجر ہے نا, جو فائدہ ہے, وہ تو آخرت ہی کا فائدہ ہے. ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجر, ہے نا. او اے اللہ, آپ انصار اور مہاجر کے اوپر رحم فرمائیے. فرحم الانصار والمہاجر, نہیں ایسا تو یہاں پہ نہیں ہے کہ باقی وہ بولتے تھے, باقی نبی علیہ السلام کو کمپلیٹ کرتے تھے. نہیں, وہ والا طریقہ اس وقت نہیں چل رہا تھا کہ آخری لفظ نبی علیہ السلام بولتے تھے, بلکہ یہاں پر پورا پورا شعر پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر ایک شعر یہ بھی لکھا ہوا ہے, اللہم یرحمک اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, کہ اے اللہ کوئی عیش نہیں ہے, کوئی مزے نہیں ہے سوائے آخرت کے مزے کے. لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمهاجر, بس انصار اور مہاجروں کی اے اللہ آپ مغفرت فرما دیجئے, غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک شعر تھا. ایک اور شعر تھا, اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ, اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے آخرت کی خیر کے, یعنی اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے. فانصر الانصار والمهاجر, بس انصار اور مہاجرین کی آپ مدد فرما دیجئے. یہ بھی شعر پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ایک اور شعر جو کہ صحابہ پڑھتے تھے, وہ کیا کہ لئن قعدنا والنبی یعمل, کہ اگر ہم بیٹھ جائیں, لئن قعدنا اگر ہم بیٹھ جائیں, والنبی یعمل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کام کر رہے ہو, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا یہ بہت آگے بڑھ بڑھ کر کے کام کر رہے تھے, خوب ساری اینٹیں اٹھا لیتے تھے. ٹھیک ہے نا, اتنی اینٹیں اٹھا لیتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا پھر اپنے سینے سے ان کو ایسے, جیسے آپ دو اینٹیں اٹھائیں تو آپ ہاتھ میں اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ پانچ چھ اینٹیں اٹھا لیں تو اب آپ ان کو ہاتھوں میں ایسے تو نہیں اٹھا کے جا سکتے نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ان کو پھر اپنے سینے کے ساتھ ایسے لگا لیتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے ٹیک لگا دینا کہتے ہیں تاکہ وہ گر نہ جائیں. ٹھیک ہے, تو اتنی اینٹیں اٹھا لیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لے لا رہے تھے. اچھا, یہ ایکچولی مسجد نبوی کی دوسری تعمیر میں ایسا ہوا تھا کہ اتنی ساری اینٹیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا لی. ٹھیک ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے دے دیجیے یہ اینٹیں, میں اٹھا لیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا, ابو ہریرہ تم دوسری اینٹیں اٹھا لو, یہ اینٹیں تو میں ہی اٹھاؤں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ایکٹیولی جو ہے نا وہ کام کے اندر انوالو تھے. ٹھیک ہے, تو اب صحابہ کرام جب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے پھر ایک شعر پڑھنا شروع کر دیا, لئن قعدنا والنبی یعمل, ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کے نبی کام کرتے رہیں, لذاک من الاعمل والمضلل, کہ یہ تو جو ہے نا بیٹھ جانا بہت ہی برا ہوگا ہماری طرف سے اگر ہم بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی کام کرتے رہے. ٹھیک ہے, یہ بیٹھنا تو ہمارا بہت ہی زیادہ برا عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ایک اور بڑی مزے کی بات آپ لوگوں کے لیے اور بھی, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے نا وہ بھی ایک شعر پڑھ رہے تھے. وہ شعر کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ لا یستوی من یعمر المساجد, کہ جو اللہ کے لیے مسجدیں بناتا ہے, من یعمر المساجد یدعب فیہا قائما وقاعدا, اور اس کے اندر جو ہے نا بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے, بیٹھے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی, یعنی بیٹھ کر کے اینٹیں اینٹیں بنا رہا ہے اور پھر اینٹیں اٹھا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے وہ اس کو وہاں پہ اپنی جگہ پہ پلیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت علی تعالیٰ پڑھ رہے تھے کہ ایسا شخص جو کہ بڑی ایکٹیولی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا رہا ہے, بیٹھ کر کے بھی کام کر رہا ہے, کھڑے ہو کر کے بھی کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کے, وَمَنْ يَرَى عَنِ التُّرَابَ حَائِدًا, اس شخص کے برابر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص جو ہے نا وہ اپنے کپڑے سے مٹی اور غبار کو جھاڑ رہا ہے اور اس کو اس بات کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں, ہے نا بھائی, کہ میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں, مٹی اگر میں اٹھاؤں گا, میں جو اگر اینٹیں اٹھاؤں گا تو میرے کپڑے کے اندر جو ہے وہ مٹی لگ جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ ہر وقت اپنے کپڑوں کو دیکھ رہا ہے کہ مٹی تو نہیں لگے, اچھا اچھا اس کو جھاڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا شخص جو ہے نا اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو کہ ان چیزوں سے بے پرواہ, اپنے کپڑوں سے بے پرواہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی مسجد جو ہے نا وہ بنانے کے اندر اتنا جو ہے وہ ایکٹیولی انوالو ہو رہا ہے. یہ دونوں لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے. کیوں پڑھ رہے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کام کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت ایکٹیولی کام کر رہے تھے اور علی رضی اللہ عنہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بغیر پرواہ کیے ہوئے کہ मिट्टी लग रही है या कुछ भी हो रहा है। जी, जज्बे की वजह से काम कर रहे थे। लेकिन अली रज़ा तान जो ये शेर पढ़ रहे थे ना, वो इसलिए पढ़ रहे थे कि एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है ना। ये जो सहाबी थे ना, ये थे जरा नाजुक मिजाज से, ठीक है ना, जरा ज्यादा केयरफुल किस्म के थे, ठीक है ना। कुछ लोग तबीयतन ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कि वो मिट्टी जरा अच्छी नहीं लगती, कपड़ों को जरा साफ सुथरा ज्यादा रखने की उनकी फिक्र होती है, ठीक है ना। तो अब ये सहाबी थे ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे थे कि ये काम तो कर रहे थे, मिट्टी उठा रहे थे, ईंटें उठा रहे थे, लेके जा रहे थे, लेकिन साथ साथ जो है ना वो अपने कपड़े भी झाड़ते जा रहे थे, है ना। तो इनको इस बात की फिक्र लगी हुई थी कि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, ठीक है। तो अली रज़ा ताला उन्होंने ना इनके साथ मजाक करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि भाई एक शख्स जिसको कि अपने कपड़ों की परवाह कोई भी है, वो शख्स जो है वो उस शख्स के बराबर कैसे हो सकता है कि जो कि लगा हुआ है काम के अंदर और बढ़ बढ़ करके जो है वो काम कर रहा है, मिट्टी उठा रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, आपको हम ये बात क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, वैसे तो सीरत की क्लास में बतानी होती है, इस वजह से बता रहे हैं। दूसरी बात एक और भी इसमें अहम है, वो ये है कि इस तरह का हंसी मजाक जो है ना, वो सहाबा के दरमियान भी चलता था। सहाबा भी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, हर वक्त रोते नहीं रहते थे, अल्लाह मर गया तो फिर कब्र का अज़ाब होगा और फिर उसके बाद आखरत का अज़ाब होगा, हर वक्त रोते नहीं रहते थे, बल्कि हंसते भी थे और एक दूसरे के साथ खुलते मिलते भी थे, ठीक है ना। और उस जमाने के जो अच्छे खेल होते थे वो खेल भी खेला करते थे, ये सब करते थे, ठीक है ना। तो इसमें दो बातों का ख्याल रखते थे, ठीक है ना। एक बात तो ये कि जिनके साथ ये मजाक हो रहा होता था तो वो माइंड नहीं करते थे बहुत, क्यों मजाक किया ऐसे मेरे साथ, है ना, क्यों उसने मेरे खिलाफ ऐसी बात कर दी, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, है ना। अब जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर के जिस तरह से हम करते हैं, है ना, कि मारना शुरू कर दिया, है ना, इसने मेरे खिलाफ मजाक कैसे कर दिया, मेरे बारे में ऐसी कोई बात क्यों कह दी, अपने काम से काम रखो भाई, है ना। उधर से जो है वो मारपीट पीट शुरू हो गई, है ना, गुस्सा होना शुरू हो गया, फिर भागे भागे जो अम्मी के पास चले गए, अम्मी इसे मेरे साथ ये कर दिया, अम्मी इसे मुझे ये बात क्यों कही, ठीक है ना। तो इतने सेंसिटिव नहीं होते थे, बल्कि हंसी मजाक को जो है वो बर्दाश्त करते थे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ये हंसी मजाक कर रहे होते थे ना उनके साथ, तो वो भी इस बात का ख्याल रखते थे कि वो लिमिट्स को क्रॉस ना कर जाए, ठीक है ना, इतना ज्यादा जो है वो ना करें कि अगले बंदे को फिर वो यानी अजियत में मुबतला कर दें, ठीक है ना, किसी तकलीफ में मुबतला कर दें। ये हंसी मजाक करने वाला भी ये काम नहीं करता था, ठीक है, जिसको कहते हैं आजकल की जुबान में कहते हैं टीज करना, ठीक है ना। टीजिंग जो है ना वो हंसी मजाक से ज्यादा होती है, ठीक है, वो फिर उसको कहते हैं तंज करना कहते हैं, ठीक है ना, किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके उसको जो है वो कोई बुरे अल्फाज कहना शुरू कर देना, ठीक है ना, किसी को कोई बात नहीं आती, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती, तो अब उसका जो है ना इतना ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर देना कि वो फिर जो है ना वो यानी टीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मजाक करना एक अलग चीज होती है और तंज करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि हम किसी के साथ तंज वाला मामला करें। अब आप हाउ डू यू नो कि तंज तक आप तंज कर रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा, हाँ भाई कैसे पता चलेगा आप तंज कर रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं, दिल को नजर आ रहा होता है ये कैसे, दिल तो खोल करके ना आप देख सकते हैं ना आप अपना दिखा सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आप इतना पीछे क्यों बैठे हैं, अब तो आपसे ही सवाल पूछेंगे क्योंकि आप पीछे बैठे हैं, कैसे पता चलेगा कि आप किसी के साथ मजाक कर रहे हैं हंसी मजाक या आप उसके साथ तंज कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, व्हाट इज द ड्रॉइंग लाइन। जी, अगर वो गुस्से में आ गया और अगर वो गुस्से में नहीं आ रहा तो किसी कमजोरी पे ताना देना,
अगर वो
अच्छा, तो कमजोरी तो जैसे ये भी कह सकते हैं, उस्मान बिन मतून हजरत आलम जो थे उनकी ये कमजोरी थी कि भी उनको मिट्टी से जो है वो थोड़ी सी चिड़ होती थी, तो अली रत आलम जो है वो उनकी कमजोरी का ही फायदा उठा करके उनसे बात कर रहे थे ना। ठीक है, तो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, इन्होंने कुछ जवाब दिए हैं यहाँ पे। इफ यू आर जोकिंग अबाउट ए वीकनेस और बैड ट्रेट द पर्सन हैज देन इट इज तंस, वही बात अगर हमें की जाए तो हमें बुरा लगेगा। ये अच्छा जवाब दिया, वही बात अगर हमें की जाती है ना तो हमें बुरा लगता। ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि भाई ये बात अगर मुझे की जा रही होती तो क्या मुझे अच्छी लगती या नहीं। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता किसी के पास उस वक्त ये सोचने का। ठीक है, कि अगर मेरे साथ ही बात, भाई उस वक्त तो जो दिल मुंह में आ रहा है वो बोलना शुरू हो जाता है। अब बैठ करके कोई मुराकबा को थोड़ी करते हैं कि बैठ के सोच रहे हैं कि अगर वो बंदा मेरे बारे में ये बात कर रहा है तो मुझे अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, इतना टाइम को थोड़ी किसी वक्त किसी के पास होता है उसका। ठीक है, अच्छा किसी और ने भी लिखा है कि ये अच्छा, मजाक डजंट हर्ट अस एंड तंज हर्ट्स। हाँ, ये एक ड्रॉइंग लाइन हो सकती है। ठीक है, कि अगर आप ये देखें ना कि उस बंदे को जो है ना अब उलझन होने शुरू हो गई है, ठीक है ना, उस बंदे को जो है वो तकलीफ होनी शुरू हो गई है, उसका जो है ना वो मूड खराब होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो यू हैव टू स्टॉप राइट अवे, आप उसी वक्त अपने आप को रोक लें। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है। ठीक है, देखें बर्दाश्त जो होती है ना वो हर बंदे की अलग अलग होती है, हर बंदे की अलग स्टैंडर्ड होता है, किसी की बर्दाश्त थोड़ी, किसी की बर्दाश्त ज्यादा, किसी की बर्दाश्त बहुत ज्यादा। अब हर बंदे के माथे पे लिखा हुआ थोड़ी होता है कि मेरी बर्दाश्त जो है वो 2 kg है, और किसी के माथे पे लिखा हुआ मेरी बर्दाश्त जो है ना वो 10 kg का तंज मैं बर्दाश्त कर लूंगा, किसी के माथे पे लिखा हुआ है, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है, आपको क्या पता किसी की क्या बर्दाश्त है। ठीक है, तो इस वजह से ना हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम उस वक्त जब किसी के साथ मजाक कर रहे हैं ना तो हम इस बात का ख्याल रखें कि हम उसके चेहरे के जो तासुरात हैं ना उसको भी देखते रहें। ठीक है ना, कि अगर इसके चेहरे के तासुरात जो है ना वो उलझन वाले और अनईजीनेस वाले तासुरात होने लगे हैं, उधर ही रुक जाए, है ना, तो ये आपको ऑन द फ्लाई ऑन द रन आपको ये बात पता चलेगी। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, कुछ बड़े लोगों को बात समझ आएगी है ना, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये बात पता चलती है, ये पहले से कोई डिफाइंड नहीं होता कि अच्छा इसकी इतनी बर्दाश्त है। हाँ, अगर आपका कोई पुराना दोस्त है, आपके घर में रहने वाले लोग हैं, खुसूसन अम्मी अब्बू आपस में है ना, तो अब अम्मी अब्बू इतने अरसे से साथ रह रहे हैं तो भाई अभी तक तो पता चल जाना चाहिए ना कि अम्मी की बर्दाश्त कितनी है और अब्बू की कितनी बर्दाश्त है। ठीक है ना, उसी तरह से आपस में दोस्त हैं, भाई बहन है ना, तो भाई बहनों को आपस में ये कर लेना चाहिए पता कि मेरी बहन की कितनी बर्दाश्त है, या बहन को पता हो जाना चाहिए कि मेरे भाई की कितनी बर्दाश्त है, और जब पता चल गई अब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो उसके अंदर ही रहकर के बात करें, उससे ज्यादा रहकर के बात ना करें। ठीक है, तो हर बंदे की डिफरेंट होती है, किसी नए बंदे के लिए तो आपको ऑन द फ्लाई देखना पड़ेगा कि भाई बर्दाश्त की क्रॉस तो नहीं हो रही है ना, लेकिन जो पुराने लोग हैं तो पुराने लोगों की जो है ना वो हमें इस तरीके से पहले से मेजर कर लेनी चाहिए। एक एक दो दफा आपको तजुर्बा हो गया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे इनकी बर्दाश्त इतनी ही है। ठीक है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ठीक है, कि तुम लोगों के साथ जो है ना इस तरह से बर्ताव ना करो, यानी जिस तरह है ना नमाज पढ़ना फर्ज है, राइट, जिस तरह से रोजा रखना फर्ज है, जिस तरह से सच बोलना फर्ज है, झूठ ना बोलना फर्ज है, ठीक है ना, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म लगाए। सूरह हुजरात के आयात है माशाल्लाह, वफाज़े कराम, वला तनाबज़ू बिल अल्काब और बेसा इस्मुल फुसूक बादल ईमान, है ना, तो सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने बाकायदा आयात के अंदर इन चीजों का हुक्म दिया है। ठीक है, कि तुम ऐसे ना करो, तुम ऐसे ना करो, तुम ऐसे ना करो। अब ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह का हुक्म हो गया ना, तो अब अगर हम माशाल्लाह मौलवी साहब तो बन गए है ना, और बहुत जो है वो नमाज रोजा और सीरत की क्लास और फलानी क्लास और फलानी क्लास, लेकिन हमारी जुबान जो है ना वो अभी भी वैसी चली चली जा रही है, चली चली जा रही है ना, कभी किसी को टीज करते रहते हैं, कभी किसी को, है ना, और फिर उसके बाद अगर दूसरा कोई दोस्त मिल जाए तो तीसरे के खिलाफ बैठ करके उसको टीज करना शुरू कर देते हैं, है ना, तो ये जो है ना ये बातें ये हराम है, और ये हराम जो है ना ये बहुत बुरे किस्म के हराम है, यानी ये हुकूक उल इबाद की खिलाफ वर्जी है, और हुकूक उल इबाद का आपको पता है ना, اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، میرا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تم نے حقوق اللہ میں کوئی کمی کر لی معاف کر دوں گا، حقوق العباد اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور حقوق العباد کے لیے معافی مانگنے کے لیے اس بندے کے پاس جائیں گے، اور قیامت کے دن تو کہے گا بھائی مجھے اپنے ثواب دو، تم اپنے جو نیکیاں ہیں نا تمہاری، میں تو تمہیں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم اپنی نیکیاں مجھے نہ دے دو، ٹھیک ہے نا. پھر اس وقت تو ہمارے پاس ویسی تھوڑی سی نیکیاں ہوں گی، تو ہم کیا لوگوں کو بانٹتے پھریں گے جن جن کا ہم نے دل دکھایا تھا، جن جن کے ساتھ ہم نے اس قسم کے معاملات کیے تھے، تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. اس وجہ سے نا ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ یہ صحابی رسول تھے، ٹھیک ہے نا، اور کیونکہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریبی تھے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے، تو اب ان کے اس مذاق کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ بھائی یہ طنز نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. ہی واز بینگ ویری کیئرفل کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ہرٹ نہ ہو رہے ہو، ٹھیک ہے. لیکن ہنسی مذاق جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں چلتا رہتا ہے. اچھا، تو اس طریقے سے ماشاءاللہ مسلمانوں نے مل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کری. مسجد نبوی کے بارے میں ایک دو باتیں اور بتا کر کے آپ کو پھر ہم کلاس ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی تفصیل اور ہے، لیکن ایک دو باتیں تھیں تو اسی میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی دنیا کے اندر تین ان مقامات میں سے ہے کہ جس کو کہ صرف اگر آپ زیارت کے لیے جانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اجازت ہے کہ ہاں تم مکہ مکرمہ کے جو مسجد ہے مسجد حرام وہاں پہ زیارت کے لیے سفر کر سکتے ہو، جسٹ فار دا ریزن آف زیارت کسی ایسے مقام کی. تو ایک تو مکہ مکرمہ کی مسجد ہے، دوسرا مدینہ منورہ کی مسجد ہے، تیسری کون سی ہے؟ مسجد اقصی، بیت المقدس، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس مسجد کے بارے میں فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی، کہ میری مسجد کے اندر نماز پڑھنا، ھذا افضل من الف صلاۃ، یہ ہزار نمازوں کے مقابلے میں بہتر ہے، ٹھیک ہے. فیما سواہ، جو کہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ پڑھی جائے، یعنی مسلمان جو کسی اور مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ان کو جو ثواب ملتا ہے، تو اگر مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہزار گنا زیادہ ثواب ملے گا. الا مسجد الحرام، ٹھیک، الا المسجد الحرام، مسجد الحرام یعنی مسجد حرام جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازیں پڑھنا کسی اور مسجد کو، اس کے مقابلے میں وہاں پر 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے، یہاں پر 1,000 گنا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسی حدیث کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیثوں سے جب جوائن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے ایسا ثواب جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر ہے، یعنی وہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور گھر کے اندر ہیں، تو اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی تو 1,000 نمازوں کا ثواب جو کہ ان کو مسجد نبوی میں مل سکتا تھا، اس سے زیادہ ثواب ان کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کا ملے گا، ٹھیک ہے، اگر مدینہ منورہ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، مسجد نبوی کے اندر جو بہت اہم اہم مقامات ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہم انشاءاللہ کی کلاسوں میں پڑھیں گے، وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے جہاں پر کہ نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز کا. دوسری ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام کا ممبر ہے، یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے باقاعدہ خطبہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ممبر ہے نبی علیہ السلام. دوسری تیسری جگہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ کس جگہ کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا ممبر، جنت کا ٹکڑا. یہ کون سی والی جگہ ہے مسجد نبوی کے اندر؟ ما بین ممبری و روضتی، روضۃ من ریاض الجنہ. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان کی جگہ ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں ممبر بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، ممبر تو سب سے زیادہ شامل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. کیوں کیوں کہا جاتا ہے اس کو ریاض؟ کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ریاض الجنہ ہے؟ وجہ تھی نا اس کی، کیوں کیسے بن گیا جنت کا ٹکڑا؟ دنیا کی ایک جگہ جنت کا ٹکڑا بن گیا کیسے؟ کیونکہ وہ تو آپ نے نعت کے الفاظ بتا دی، मस्जिद अक्सा जी, घर तो रोजा है, ठीक है, और ये मिंबर है, मिंबर और रोजे के दरमियान की जो जगह है ये क्यों है रौज़तुम मिन रियादिल जन्नत, ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम कम अज कम एटलीस्ट दिन में 5 मरतबा यहां से चल करके यहां जाते थे और यहां से चल करके वापस यहां जाते थे, फिर अगली नमाज का वक्त हुआ यहां से चल करके यहां जाते थे और यहां से चल करके यहां जाते थे, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम की आमद और रफ्त, ये जो गुजरगाह थी ना, नबी अलैहिस्सलाम के इतना फ्रीक्वेंटली गुजरने की वजह से ये अल्लाह ताला ने जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम के खाली पैर मुबारक वहां पे इतने ज्यादा लगते, ठीक है ना। तो आपके जैसे सवाल था कि क्या मिंबर भी है, तो भाई मिंबर में तो नबी अलैहिस्सलाम खुद बैठे होते थे, ठीक है ना, तो वो तो सबसे ज्यादा इसके अंदर शामिल हुई। और रोजा जो है वो तो और भी ज्यादा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा वक्त जो है वो रोजा मुबारक के अंदर गुजरता था। यहां तो सिर्फ चलने फिरने की वजह से उसको जन्नत का बाग बना दिया अल्लाह ताला, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, वहां पर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ और तफसीलात हैं मुझे नबी के बारे में, अभी क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।